शब्द का अर्थ इस प्रकार से है, ना नहीं, अहम मैं, ममा मेरा, इति इस प्रकार, भावः चेतना, अयम यह, पुरुषे जीव में, व्यवधीयते विलग रहता है, यावत जब तक, बुद्धि बुद्धि, मनः मन, अक्ष्य इंद्रियां, अर्थ इंद्रिय विषय, गुण गुणों का, व्यूह प्राकट्य, ही निश्चय ही, अनादिमान सूक्ष्म शरीर, अनादिकाल से विद्यमान। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रहे आते हैं। तात्पर्य, मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब स्थूल शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती है। भौतिक पहचान की चेतना यथा मैं और मेरा तब भी बनी रहती है क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही है, किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सताते। अनुवाद थोड़ा दोहराइए। जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रहे आते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखानितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम समस्त वैष्णव तथा वैष्णवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में जो बताया गया है उसको हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि निर्धारित वक्ता वो नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है, अर्थात जो आज बोलने वाले थे किस कारणवश नहीं आ पाए, इसीलिए श्रीमान असीम कृष्ण प्रभु जी ने आज्ञा दी और उनके आज्ञा और अनुमति और आशीर्वाद से हम आज कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो ये शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य बातचीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहां इस श्लोक में और जो कल का श्लोक हुआ था उसमें जो विषय वस्तु है वो संबंधित है, वो लगभग समान है, अर्थात एक पर्टिकुलर एक विशेष विषय या टॉपिक के ऊपर चर्चा की जा रही है और वो है इच्छा। आज का विषय है इच्छा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजायर। अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि जो परम भगवान है श्री कृष्ण वो सड़े ईश्वर्य पूर्ण है और भगवान होने के नाते उनमें सब कुछ है, इच्छा भी है और भगवान इच्छा करते हैं। बाइबल में कहा गया है कि भगवान ने इच्छा की सृष्टि की इसलिए सृष्टि हुआ, इस तरह से वर्णन है। तो भगवान का इच्छा है और उसके बाद जो उनके एक अंश है जिसको अणु कहते हैं या जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिनका एक भगवान परम विभू है और उनका एक अणु अंश है जो जीवात्मा है, इसका मतलब जो हम सब हैं। तो ये जो है हम सब जीवात्मा जो हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं वो कि ये जो है हम लोग जो हैं सैंपल, जैसे सैंपल समझते हैं ना, किसी चीज को दिखाने के लिए हम कभी कभी सैंपल दिखाते हैं, ये देखिए, फिर वो जो मूल वस्तु वैसा ही है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो हैं वो परम भगवान के सैंपल हैं, जीवात्मा जो है परम भगवान जो है श्री कृष्ण है उनका एक अणु अंश जो है वो सैंपल है। तो इसके नाते हमें यह समझना चाहिए कि हमें भी इच्छा है और तो वो उसमें कोई द्विविधा तो नहीं है, तो हमें भी इच्छा है। अब क्या है कि जीवात्मा के ऊपर दो कवरिंग है, ये बहुत आसान है समझने के लिए, जैसे और हम लोग सुन के भी आ रहे हैं, बस उसी को ही हम आवृत्ति करते हैं कि जैसे बहुत ही आसान है समझने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई पुरुष है ना, पहले एक बनियन पहनता है, उसके ऊपर एक कुर्ता पहनता है, शर्ट पहनता है, ठीक उसी प्रकार से एक जीव जीवात्मा के ऊपर एक कवरिंग है, एक आवरण है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि और अहंकार से, तो समझ लीजिए बनियन जैसा है। और उसके ऊपर और एक हम लोग शर्ट पहनते हैं कुर्ता, और अर्थात वो स्थूल शरीर है और वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ, जो हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, ये जो है स्थूल शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को ये स्थूल इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर कभी कभी ऐसे दिखाई देता है जो सबको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है तो बहुत ही विरला कभी कभी सूक्ष्म शरीर ऐसे प्रतीत होता है, दिखाई देते हैं, जो हम सब जानते हैं कि वो स्थूल शरीर जिसको प्राप्त नहीं हुआ है उस सूक्ष्म शरीर में वो विचरण करते रहते हैं, जिसको प्रेत कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अब यहां लिखा गया है कि मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति तब होती है जब उसको एक स्थूल शरीर मिलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में चाहे कोई कितना भी इच्छा प्रकट करे वो इच्छा पूर्ण नहीं हो सकता, इसके लिए उसको एक स्थूल शरीर चाहिए। सरल तरीके से कहा जाए जैसे कोई जैसे प्रेत होते हैं, वो लोगों की इच्छा रहती है कि हम कुछ भोग करें या हम कुछ प्राप्त करें, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में है, तो उनको एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है, इसलिए कभी कभी वो स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हम गांव में कहते हैं कि इसको भूत लग गया, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा इच्छा का पूर्ति करने के लिए वो स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो अपनी इच्छा को तृप्त कर जो पूर्ण करने के वो प्रयास करता है। तो इसके लिए एक स्थूल शरीर चाहिए। प्रभुपाद जी हैं तात्पर्य में ये लिखते हैं, जब स्थूल शरीर प्रकट नहीं होता है तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। अब हम जो यहां कार्य करते हैं, हम सब जो व्यक्ति जीवात्मा संसार में कार्य करते हैं, उसका कारण क्या है? तीन गुण, तीन गुण से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। वो कौन से? सत्व, रज और तम। लेकिन सूक्ष्म शरीर में गुणों का प्रभाव नहीं होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जब तक उसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है तो गुणों के अनुसार वो कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जो जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो मैंने बताया आज का विषय हम इच्छा के ऊपर चर्चा करेंगे, जब भगवान की एक इच्छा है उस प्रकार से जीवात्मा हम उनके अंश होने के नाते हमारे भी इच्छा है। ऐसा कोई व्यक्ति है इस सभा में जो बैठा है जिसकी कोई इच्छा नहीं है? हाथ उठाओ, है ना? अगर कोई इच्छा नहीं है बोल दे तो हम उनके चरण धुली लेंगे। तो इच्छा नहीं है या इच्छा को पूर्णतया से जो बंद कर देना, उसको जो समाप्त कर देना, यह संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं, बिना इच्छा के अगर कोई है जीव हो ही नहीं सकता, वो इसका मतलब पत्थर है, वो पत्थर का कोई इच्छा नहीं है, इसका कोई इच्छा है? ये मैटर है, जड़ है, इसका ये चाहे भी तो यहां से वहां नहीं जा सकता, इसकी इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं जो जिनको बुद्धिस्ट कहते हैं, बौद्ध धर्म के जो पालन करते हैं, वो कहते हैं कि इच्छाओं का निर्वाण अर्थात कामनाओं का विनाश कर दो फिर आप सॉरी कामनाओं को विनाश कर दो फिर आपको निर्वाण प्राप्ति मिल जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि संभव नहीं है, कामनाओं को विनाश कोई नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा कभी। हमारे वैष्णव सिद्धांत क्या कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी हमको शिक्षा देते हैं कि कामनाओं को विनाश नहीं कर सकते। आपको अगर एक एक नोटबुक और पेन दिया जाए, ठीक है, आपको बोला जाएगा कि आज रात में जाइए, आज जाइए और कल सुबह जब आप हमसे मिलेंगे और आप नोट करके आइए क्या आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आपको गारंटी देके कहूंगा वो नोटबुक फुल हो जाएगा, आप दूसरे नोटबुक मांगेंगे, रजिस्टर फुल हो जाएगा, इच्छा समाप्त नहीं होगी। आप सोचेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारे इच्छाएं जो है वो हमारे मन में आते हैं, और यही एक कारण है। क्या कारण है? कई बार भक्त लोग चाहे जनसाधारण ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आप तो ये बता रहे हैं कि भौतिक संसार दुखमय है, क्लेश है, और आध्यात्मिक जीवन कितना आनंदमय है, जहां जाने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म मृत्यु किसी प्रकार का कष्ट नहीं, तो फिर हम यहां क्यों हैं? क्यों, किस लिए हम इधर ही हैं? बहुत बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं, जब एक बार हम जान लेते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि आध्यात्मिक जीवन जो है आनंदमय है, आध्यात्मिक जगत जो है बहुत ही सुखदायी है, तो फिर हम यहां क्या कर रहे हैं, क्यों हैं? इसका उत्तर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं सातवें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में, बहुत ही सुंदर श्लोक है और प्रसिद्ध श्लोक भी है, वो आप जानते भी हैं, उसको आवृत्ति आप कर सकते हैं मेरे पीछे बोलिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। तो यहां श्री भगवान कहते हैं और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं तात्पर्य में कि देखिए इस प्रश्न जो मैं अभी बताया उसका उत्तर क्या है। उत्तर यही है कि हे भरत भंसी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात है इच्छा, कोई गलत नहीं है, इच्छा करना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है इच्छा करना। तो फिर समस्या क्या हुआ कि हमने कुछ गलत इच्छा की। जीवात्मा जब गलत इच्छा कर, इच्छा करने का कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, जब गलत इच्छा होती है और वो गलत क्या है कि वो ये है कि भगवान से अलग, भगवान से बिलग, भगवान से अन्य, इतर, भगवान से इच्छा से हमारा इच्छा जब अंतर आता है। सबसे पहली देखिए आप जड़ को जाइए, जो बद्ध अवस्था का मुख्य कारण जो है उसका जड़ यह है कि इच्छा, और इच्छा वो भी गलत इच्छा कि भगवान से बिलग हो जाना और भगवान की इच्छा से अनुरूप ना होके प्रतिकूल हो जाना। ये जब इच्छा प्रकट होती है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, चाहे कुछ भी हो जो कि भगवान से इच्छा से मेल नहीं होता है, और इसके बाद फिर उसका ठीक जो कह सकते हैं कि उसके बगल में है और वो है द्वेष। इच्छा प्रकट हो गई, इच्छा अगर तृप्ति नहीं हुआ और हमने गलत इच्छा की, फिर द्वेष प्रकट हुआ। ये शुरू होता है उसी परम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, वहीं से इच्छा, गलत इच्छा हुआ कि हम भी कुछ करें या हमारा कुछ अपना स्वतंत्रता जो हम कुछ करना चाहते हैं, इच्छा हुआ और फिर द्वेष प्रकट हो गया। द्वेष किस चीज की द्वेष? कि भोक्ता बनने की, जो केवल क्यों एक ही व्यक्ति, क्यों, वाई ओनली कृष्ण, यही अंतर है हमारे इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में कि केवल एक ही व्यक्ति, एक सेंट्रल पॉइंट जो है वो एक ही व्यक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण, केवल वही भोक्ता है और बाकी सब उनकी सेवा करते हैं। ये विषय वस्तु हमने कई बार सुने होंगे, लेकिन देखिए कि जब हम कोई विषय वस्तु को बार बार सुनते हैं उसका असर आ जाता है, उसका असर पड़ता है, इसलिए हमारे लिए एक पुनरावृत्ति जैसा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ये मन में भावना होता है कि जो केवल एक ही व्यक्ति, क्यों, हम क्या कर नहीं सकते, क्या हम वो स्थिति में नहीं हो सकते क्या, तो ये होता है भगवान से जीव का द्वेष। अब जब इच्छा हो गई, अलग इच्छा, फिर इसके साथ साथ द्वेष भी हो गया भगवान से, तो फिर हो गया क्या, द्वंद्व में पड़ गए हम और फिर मोहग्रस्त होने। क्या है वो द्वंद्व? द्वंद्व क्या है और मोह क्या है? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उनकी दुर्भाग्य है, यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति, अब द्वंद्व सुनिए क्या है, मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, ठंडी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, ऐसे जितने भी सब प्रकार के सब दुविधा सब व्यक्त है, इसको सबको द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व में पड़ के हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो द्वंद्व में जब आ जाते हैं फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं, तब हमारे मन में ये आता है ये तो मेरा है, ओह वो मेरा नहीं है, वो ये मेरा भाई है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे घर के परिवार है, ये मेरे गांव के हैं, मेरे शहर के हैं, और ये बढ़ते बढ़ते जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि शहरों में एक अपना एक कम्युनिटी बना देते हैं, उड़िया कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी या बंगाली कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, वो एक ही शहर में, एक ही मुंबई शहर में कई सारे कम्युनिटी आप देख सकते हैं। तो ये है अपने अंदर जो ये जो मोहग्रस्त होके जो हम लोग सोचते हैं, ये जो अपना ये कौन है, अरे हमारा जाति भाई है, है? आपका जाति भाई वो के पराए हो गए। देखिए कैसे वो विस्तारित होता है, फिर धीरे धीरे कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का है और गर्व से कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के हैं, बड़े ही सिनातान के बोलते हैं, है ना। तो ये सब विस्तारित होता है, फिर आगे जाके क्या कहते हैं कि हम हिंदुस्तान हैं और नारे भी लगाते हैं, फिर हम भारतीय हैं। प्रभुपाद जी कई बार प्रवचन में आप सुने होंगे इसको, वो बहुत बोलते हैं जोर देके, फिर हम भारतीय हैं, वो हम हिंदुस्तान हैं, तो वो पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान है, वो कजाकिस्तान है। तो फिर बढ़ता है इस ये जो भावना मेरा पराया, और ये बढ़ता है। शुरू कहां से हुआ देखा आपने, एक छोटा सा गलत इच्छा, उसके वजह से द्वेष, फिर हमारा द्वंद्व में आना, फिर मोह, मोह से फिर धीरे 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 ये बढ़ता जाता है। इसी के वजह से सारे समस्या, जितने भी समस्या है उसका जड़ क्या है, बस यही है कि हमारे ये जो गलत इच्छा, भगवान से विलग होके हमारी जो इच्छा है, ये जो हम अपने तृप्त के लिए जो इच्छा करते हैं, इसके वजह से सारा गर्व। यहां तक कि क्षमा कीजिए बोलने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन हमने देखा है, आप सबका अनुभव है कि वास्तव में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। वो ये है, मंदिर में भी, भक्तों के समाज में भी, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे ये हमारे गांव का है, ये हमारे शहर का है, हमारे राष्ट्र का है, तो इससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। और वो अगर हमारे राष्ट्र का नहीं है, अगर या दूसरे प्रदेश का है या दूसरे प्रांत का है, तो उनसे थोड़ा हम अलग रहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रभुपाद जी के अनुसार। कि कैसे वृद्धावस्था, देखिए भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हम लोगों में मन में ये रहता है, ये मेरा ये पराया, ये मेरा ये पराया। जब तक ये भावना नहीं जाता है, तो हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि संसार में हम रहेंगे ही, टिकट नहीं मिलेगा। जब तक से ये भावना नहीं जाता, ये परपोट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मोह है, ये द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं, और वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते, केवल इसमें ही फंस रहे हैं, बस मैं और मेरा, इसी जो मोह में फंसे हुए हैं। ये सारा जो हमारा जो भक्ति का जो पद्धति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जितना भी नवदा भक्ति है और जो भी हमारे जो प्रक्रिया दी गई है हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ये एक जो है प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है हमको इस भावना में लाने के लिए। वास्तव में ना हम ये स्थूल शरीर हैं जो देख रहे, ना हम कुर्ता है ना बनियन है, ना हम ये स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म है, हम तो भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य अंश हैं। जैव धर्म के पहले अध्याय में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म का बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं पानी का, ये उदाहरण हमने कई बार सुने हैं, पानी का नैसर्गिक धर्म है कि तरलता, लिक्विडिटी। आप वो कहेंगे, मान लो जब ये बर्फ होता है तो ऐसे पोलर रीजन में जाएंगे जहां हिम ऋतु ज्यादा है, ठंडी पड़ता है ज्यादा, तो वहां बर्फ ही रहता है, आप पानी देखने को ही नहीं मिलेगा, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। तो वो क्या है फिर, वो कहते हैं जब वहां जो पानी की जो तरलता है उसमें कुछ मिलाया जाता है, कुछ किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, तब उसमें विकृत आता है। कहने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए, उसका विकृत, उसमें विकृत आता है, वो क्या बन जाता है, बर्फ। तो बर्फ है लेकिन वो उसका परिवर्तन है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ में आ रहा है ना, पानी का रासायनिक परिवर्तन करने से बर्फ होना वो उसका जो दूसरा रूप है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो है पानी, तरलता। भगवान ने जब पानी बनाया ना, जब पृथ्वी जल वायु अग्नि जो पंच महाभूत बनाया, जल को तरल ही बनाया, कठिन नहीं बनाया। जल तरल ही, जब से वो बनाया वो तरल ही है। कभी भी नहीं देखेंगे जल एक स्ट्रांग कठिन जड़ वस्तु है। सर कहने का मतलब है कि जैसे बर्फ जैसा कठिन है, वो उसका विकृत रूप है। तो पानी और बर्फ में जैसा अंतर है, उसी प्रकार से हम जीवात्मा वो है भगवान के शुद्ध जो अंश है, वो हमारा स्वरूप ही है कि भगवान से भक्ति करना, सेवा करना और प्रेम करना। अब प्रश्न उठता है, जो हम यहां जो दुनियादारी कर रहे हैं वो क्या? फिर वो बर्फ है, समझ में आ रहा है? वो बर्फ है, वो परिवर्तन हो गया, उसमें कुछ विकृति डाल दी गई है। वो क्या है? ये तीन गुण के प्रभाव से माया में आके हम लोग, हमारा जो स्वरूप है, स्वभाव है, परिवर्तन हो गया है। लेकिन आप तापमान कम कर दीजिए, सॉरी तापमान बढ़ा दीजिए, बर्फ फिर पानी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बर्फ को फिर से अपनी स्थिति में लाने के लिए क्या करना चाहिए? तापमान बढ़ा दीजिए। तो उसी प्रकार से जीव जो है, हम स्वभावत स्वरूपत भगवान के अंश है, और भगवान की सेवा भक्ति प्रेम करना यह हमारा जो लक्षण है। लेकिन जब इसमें कुछ परिवर्तन होता है, इस भौतिक जगत में आके, माया के संपर्क में आके, तीन गुण के प्रभाव में आके जो हम लोग हैं, वो हम बदल जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कवरिंग आ जाते हैं, आवरण एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो भी सब मैंने आवरण बताया, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम उड़िया हैं, हम बंगाली हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, सब जो है आवरण है, एक के ऊपर एक उपाधि है। तो ये जो भक्ति का प्रक्रिया है, ये आवरण को हटाना है। इसलिए कम से कम हम भक्तों के समाज में जब आते हैं, ये मनोभाव नहीं होना चाहिए। और इच्छा जो है, फिर मैं वही पॉइंट में आता हूं, जो इच्छा है इसको हमें क्या करना है? पूर्णतया समाप्त तो नहीं कर सकते, बस बदलना है। बदलना है का अर्थ यह है कि उसको आध्यात्मिक इच्छा करना है। मायापुर में एक भक्त हैं, विद्वान गौरांग प्रभु, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। कुछ दिन पहले हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर में आए थे, पुणे मंदिर में। तो वो एक बहुत सुंदर माधवाचार्य की कमेंट बता रहे थे। आप जानते हैं माधवाचार्य हमारे एक हमारे ही जो गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हैं। वो बता रहे थे, देखिए इच्छा जो है कितना खतरनाक है, इसी के वजह से ये सब प्रपंच है। वो बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति विशेष करके 14 साल के उम्र में, जब वो इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में टीनेज, हिंदी में क्या कहेंगे? किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, सही बोलो? तो उस अवस्था में जिसको जैसे 13-14 साल का उम्र हो जाता है, उस समय उसको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि उस समय व्यक्ति के मन में ऐसे इच्छाएं आती हैं, बहुत सारे इच्छाएं प्रकट होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम सबका अनुभव है, आप सब जानते होंगे, इसमें और कोई छुपाने की बात नहीं। हम सबके मन में कितनी इच्छाएं आए, और उस उम्र से लेकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 20-25 साल की उम्र तक, ये जो पीरियड है ये बहुत ही जो है सेंसिटिव है, और बहुत ही उसमें सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में जो भी इच्छाएं हमारे मन में आते हैं, एक एक इच्छा के लिए कई शरीर बदलने पड़ते हैं। मैंने संस्कृत का श्लोक कोट करके बताया, जो मैं मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ मैं बता रहा हूं। इस उम्र में, इस वयस में, इस आयु में एक व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं करता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, अर्थात आध्यात्मिक दिशा में उसको बदलता नहीं, एक इच्छा के लिए, मान लीजिए आपके मन में अगर एक इच्छा होगी, मिनिमम एक इच्छा, कि एक रसगुल्ला खाने की या एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा रहेगी, तो जानते हैं इसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, शरीर बदलना पड़ेगा, कई शरीर बदलने पड़ते हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ता है, वो जो इंद्रियों की शक्ति वो सब कम हो जाती है। भोग करने की जो इच्छा तो रहती है, लेकिन जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन में बहुत अच्छा एक जो प्रचार कार्य शुरू किए, जैसे हमारे यहां श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु कर रहे हैं, बाकी कई सारे भक्त करते हैं, युवा पीढ़ियों को प्रचार करना ये जरूरी है। ये किस लिए आवश्यकता है इसे आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से, कि जो उम्र में इतनी इच्छाएं होती हैं। श्री प्रहलाद महाराज भी अब सातवां स्कंद में कहते हैं ना कि जो है जो उम्र की वो गणना करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 100 साल है तो कुछ साल तो बाल्यावस्था में चले जाते हैं खेल क्रीड़ा खेल कूद में, और फिर ऐसे ऐसे करके वो कहते हैं फिर वार्धक्य अवस्था में भी चले जाते हैं बीमारी होके, और वो तरुण अवस्था जो है यौवन अवस्था है उसमें पूरा पूरेण कामेन कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है कि मुझे गाड़ी खरीदना है वो खरीदना है वो करना है वो करना है फिर विवाह करना है ये करना है, बहुत सारी इच्छाएं उसका कोई अंत नहीं है। और उस समय कौन कौन चाहेगा कि मैं भगवान की भक्ति में आऊं, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो इतने सारे रहते हैं। इसलिए उस अवस्था में किसी को अगर मोटिवेट कर दिया जाए और उस अवस्था में किसको अगर भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वास्तविक कल्याण होता है उसमें, उस व्यक्ति को और जो करने वाला उसका तो होता ही है। इसलिए वो जो है समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इच्छा के वजह से हम लोग तरह तरह के शरीर बदलते हैं, तो ये शुरू होता है भगवान से, फिर धीरे धीरे फिर भौतिक जगत में आके पूरा विस्तारित होता है, इच्छा द्वेष, फिर ये ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये सब जो द्वंद्व है इससे फिर चालू होता है। फिर ये जो शारीरिक चेतना जैसे मैं और मेरा, जैसे शंकराचार्य भी अपने एक स्तुति में कहते हैं कि बाल्यावस्था क्रीड़ावस्था फिर तरुणावस्था तरुणी आ सकता वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता फिर परम ब्रह्मणी कोपी न सकता। बाल्य अवस्था में क्रीड़ा है, तरुण यौवन अवस्था में युवतियों के साथ या परस्पर जो है संबंध उसमें आसक्त रहते हैं, वृद्धावस्था में हरे कृष्ण चिंता बहुत लगे सब लोग हाथ माथे पे हाथ लेके बैठते हैं चिंता रहता है, परम ब्रह्मणी कोपी न सकता है कोई आसक्त नहीं है परम ब्रह्म से, जिसके प्रति आसक्त होना चाहिए उसके प्रति कोई नहीं आसक्त है, बाकी जीवन में सबके प्रति आसक्त है। फिर वो शारीरिक चेतना से हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो मैं और मेरा के द्वंद में फंस जाते हैं, वास्तव में हमें जानना चाहिए श्रीमद भागवतम में कम से कम तो 4-5 बार ये उदाहरण दी आई है। वो क्या है उदाहरण कि देखिए दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक जो है व्यक्ति सोने के बाद रात में स्वप्न देखता है। पहले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या कभी कभी भक्त लोग भी प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे स्वप्न में नींद में बुरे सपने क्यों आते हैं, कभी कभी आते हैं ना ऐसे बहुत ही खतरनाक स्वप्न आते हैं जो हम नहीं चाहते, मेरे मन में ऐसी इच्छा कैसे आ सकती है, अब तो मैं जप कर रहा हूं भक्ति कर रहा हूं विषय वासना से निवृत्त रहना प्रयास कर रहा हूं रहता भी हूं सब शुद्ध सात्विक वातावरण में रहता हूं फिर भी ऐसे स्वप्न आते हैं ऐसे घटिया ऐसे मैंने बहुत ही खतरनाक स्वप्न आते हैं है ना स्वप्न दोष, फिर ऐसे कैसे होता है भक्त के जीवन में ऐसा कैसे होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जानते हैं ये केवल एक जीवन की बात नहीं है, जब से हम इस संसार में हैं तब से हम इच्छा की है जिसके वजह से हम यहां हैं और अलग अलग शरीर बदल रहे हैं, और तरह तरह के जो शरीर में हमने अलग अलग इच्छाएं की हैं वासनाएं की हैं कामनाएं की हैं वो जरूरी नहीं कि स्थूल शरीर में हमें मिले। और जब व्यक्ति को भक्ति मार्ग में आ जाता है वो तो बाह्य दृष्टि से पाप नहीं करता है, बाह्य दृष्टि से वो किसी प्रकार के अनाचार नहीं करता है, लेकिन वो जो डिजायर है वो बीज है जो इच्छा है वो अंदर है और उस इच्छा को वो नहीं चाहता है क्योंकि वो समाज का विरोध है और भक्ति के नियम है जिसके वजह से वो नहीं करना चाहता है, लेकिन क्या करें हम सबका अनुभव है ये इच्छा है पूर्व जन्म के संस्कार से, संस्कार इतने पड़े हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जैसे कहते हैं ना पाइल्स, ऐसे बहुत संस्कार है। तो जितने तीव्रता से हम भक्ति करते हैं, जैसे एक भक्त बहुत सुंदर उदाहरण रहते हैं, मान लो एक एक जो पेपर है, कागज के एक बंडल है, तो आप सुई से उसके अंदर जो है डालते हैं, सुई को डालते हैं, सुई होता है, निडल होता है ना, उसको डालते हैं, तो जितना शक्ति से आप उसको अंदर डालते हैं सुई को, और जितना दूर तक वो जाता है उतना ही कागज छेद हो जाता है। अगर नहीं जा पाता है तो वो छेद नहीं होता है। भक्ति की प्रक्रिया ऐसी है कि जितना तीव्रता से हम भक्ति करते हैं, जो कर्मों की जो गठरी है वो बंडल है, उतना वो जो है जितना तीव्रता से करते हैं वो नष्ट होते जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग और तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ कागज बच जाते हैं और वो संस्कार मन में रहते हैं। जो संस्कार, क्योंकि हम स्थूल शरीर में इच्छा को तृप्त नहीं कर पाते हैं, स्वप्न में आते हैं, वो स्वप्न में आते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके कभी कभी स्वप्न में दिलाते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी ये इच्छा थी, इसलिए भोग को प्राप्त कर लो, सपना में कर लो। स्थूल शरीर में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि बंधन है, और हम लोग भक्ति के नियमों को पालन कर रहे हैं, अगर करते हैं तो फिर दंडित होंगे। इसलिए बुरे सपने तभी आते हैं क्योंकि वो इच्छा थी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण इच्छा सुनी फिर भी क्यों आते, नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो इच्छा के वजह से वो तो, इसलिए कि हम लोगों को ये जो है ना तीव्रता से भक्ति करना है, ताकि जो है ये जो बंडल है कर्म का वो धीरे धीरे से नष्ट हो जाए और वो जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो अंत में मैं आपको छोटा सा एक कहानी बता के समाप्त करता हूं, बहुत सुंदर कहानी है। वो ये है कि कैसे ये संसार में जो हम लोग आके द्वंद में फंस के, मोह माया के चक्कर में फंस के, और हम सोचते हैं कि जो एक तो जैसे मैंने दो प्रकार के स्वप्न बताया, रात में स्वप्न देखते हैं और एक दिन में स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न क्या है? दिवा स्वप्न ये है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं टेम्पल कमांडर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो जितना भी सब उपाधि है वो दिवा स्वप्न है। ना हम ये है, ना हम जो रात में स्वप्न देखते हैं वो है, हम तो कुछ अलग ही हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, रोज गंगा स्नान करने जाते थे, पुराणों में एक कहानी आती है। तो उनका क्या, वो गरीब ब्राह्मण थे, गीतापाठी ब्राह्मण, भगवत गीता को पढ़ते थे और रोज गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन वो भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे थे कि मांग में वो यो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंति थे। उसका पहला लाइन क्या है? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत है। तो उनके मन में थोड़ा संशय आया, अरे भगवान की माया जो बहुत ही प्रबल है ऐसा कहा जाता है, कैसी प्रबल है ये? उनके मन में थोड़ा सा संशय आया। गीता को रख दिए, रोज की तरह वो गए गंगा स्नान करने, अपना बहिर्वास नदी के तट पर रखे, अंदर गए स्नान करने के लिए। तो रोज वो उनका दैनंदिन कार्यक्रम था, वो करते थे। गए अंदर पानी में, तो जनरली जो साधन तो क्या होता है कि ब्राह्मण लोग गंगा में स्नान करते समय तीन बार डुबकी लगाते हैं, एक फिर उठते हैं, दो तीन। जब तीन बार डुबकी लगाए, तीसरी बार जब उठे, अरे ये क्या, मैं तो कुछ अलग जगह पे हूं। वो कहां पहुंच गए थे पता है? जगन्नाथपुरी के समंदर के किनारे, और समंदर के लहरों से वो उठे और वो देख रहे हैं, अरे ये क्या है, मैं तो समंदर के किनारे हूं। और वो इधर उधर देख रहे थे, मैं कहां आ गया, मैं तो कहीं दूसरे जगह में था, यहां कैसे आ गया। और तब तक क्या हुआ कि दूर से एक यजमान, एक धनी व्यक्ति, वो आ रहा था अपने कुछ साथियों के साथ, चेलों के साथ सब आ रहा था। वो तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण जो है वो सुन रहा है। तो एक जो उनका जो साथी था वो अब धनी व्यक्ति को बोल रहा है, वो श्रीमान जी आप तो ढूंढ रहे थे ना एक ब्राह्मण, अच्छा कुलीन ब्राह्मण, ये देखिए सामने ये स्नान करके अभी अभी आ रहा है, चलो इसको पकड़ते हैं। तो ये सब सुन रहा है, ये क्या हो गया, ये मुझे क्यों पकड़ने आ रहे। तो दो व्यक्ति आए, उसको पकड़ लिए, चलो कहां चलना है, चलो वो बुला रहे हैं, ऐसे करके उसको पकड़ के लेके गए। तो वो जो श्रीमंत थे बोलते हैं चलिए हमारे घर। तो ये मन में ये पूछ रहे हैं कि क्या हम मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने क्या गुनाह किया, मेरा गलती क्या है? नहीं गलती नहीं, आपको जाने के बाद बताएंगे, चलिए। तो उसको वो पकड़ के लेके गए। लेने के बाद देखे क्या भव्य महल है, ऐसा तो वो सपने भी नहीं देखा था, सत्य की बात दूर, इतना सुंदर महल है। क्योंकि बड़ा धनी व्यक्ति था वो, और वहां तरह तरह की भोग करने की सामग्री है। उसको लेके गए और दो व्यक्ति उसको बड़ी अच्छी तरह से नहाए, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनाए और बढ़िया सुंदर से छप्पन भोग ले आए पकवान और खाने को दी। ये तो बेचारा ब्राह्मण कभी पांता भात से ज्यादा नहीं खाया होगा उसको सब ये सब भोग सामग्री मिला तो खाते रहा। खाने के बाद जब एकदम सब कार्यक्रम पूरा हो गया, अब वो श्रीमंत व्यक्ति इनको बोल रहे हैं, देखिए जी वास्तव में ये है कि मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटी है जिसका मैं एक अच्छा वर ढूंढ रहा था और मुझे एक कुलीन ब्राह्मण चाहिए, और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, तब उसको समझ में आया कि जगन्नाथपुरी है, ये बोले भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप ही हमें मिल गए, सुबह सुबह हम चल रहे थे और आप ही हमें मिल गए, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बेटी का पाणी ग्रहण आप कीजिए। तो ये और कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिए गए थे, इतने सारे जो भोग सामग्री मिला वो सोच नहीं पा रहे कि मैं हां बोलू या ना बोलू, मैं कहां आ गया हूं। तब तक क्या हुआ, फिर वो बात आगे बढ़ी, उनका चटमंगनी पटसादी हो गया, विवाह हो गया। विवाह होते होते उसका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरा। फिर एक साल, दो साल, दो साल बीत गए और उसके दो ऑफस्प्रिंग भी हो गए, बच्चे हो गए उस व्यक्ति का, ब्राह्मण का। उसके बाद क्या हुआ कि दो साल जब हो गया, होने के बाद वो रोज की तरह जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाता था, और सागर में जो जिसको महोदधि कहते हैं, पंचतीर्थ में से एक है, वहां जाके स्नान करता था। तो इस बार वो रोज की तरह आया स्नान करने। स्नान करने के बाद फिर से वो तीन बार डुबकी लगा के स्नान किया, एक दो और तीन, जैसे डुबकी लगाया स्नान करने के बाद जब उठा काशी में पहुंच गया। कहां? जहां से वो था पहले वहां पहुंच गया। तब उसका दिमाग जो है और काम नहीं किया, तब वो सोचने लगा मैं पूरी का हूं कि काशी का हूं, वो कहां का हूं, पहले तो मैं ये सोचना चाहिए कि मैं कहां का हूं। तट पे देख रहा है कि उसका वस्त्र पड़ा है और उसके जितने भी जाने पहचाने लोग सब चल रहे हैं, और कोई बोल रहा है पंडित जी राम राम, अब तो अब जल्दी स्नान कर लिए। अरे जल्दी स्नान कर लिए, दो साल हो गया मैं जल्दी स्नान करे बोल रहे, तो सब उसको बोल रहे हैं ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह अपना शरीर को पोछ के वो घर गया। तो घर गया तो देख रहे हैं कि जो पत्नी जो थी वो कुकिंग कर रही है, भोग बना रही है। जब पतिदेव आ गए तो पत्नी क्या बोल रही, अरे क्या बात है आज तो आप जल्दी आ गए, आप तो हमेशा अभी नहीं आते थे। तो ये सुन के और उसका शौक बढ़ा, अरे ये लोग राम राम बोल रहे हैं जल्दी आ गए जल्दी स्नान कर लिए, ये क्या बोल रही है हमारी भगवान कि जल्दी आ गए आप। मैं जल्दी आ गया, फिर दो साल तक मैं था, मेरा एक बहुत सुंदर मैंने धनाढ्य ससुर जी थे और इतना सारा ऐसो आराम, और मेरे दो बच्चे भी थे। फिर वो मोहित हो गया, बिल्कुल से मोहित हो गया कि असली जीवन कौन सा है कि मैं एक धनी परिवार में एक धनी व्यक्ति का जमाई हूं, या मैं ये जो गरीब ब्राह्मण हूं जो मैं काशी में रहने वाला हूं। तो बिल्कुल से वो मोहित हो गया। तब उसके समझ में आया कि दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुदत्तया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, संशय करेंगे तो फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब है एक्चुअली वो सही में देखा जाए तो वो काशी का ही ब्राह्मण था, लेकिन जो वो पुरी का ब्राह्मण बन गया था, किसका जमाई बन गया था, वो एक स्वप्न है और एक माया है। लेकिन उसी को वो वास्तविक समझ लिया था। उसी प्रकार से जो हम जीवात्माएं हैं, हम जो है भगवान के जगत से हैं, और यहां आने के बाद हम तरह तरह के जो मेरा पत्नी मेरा बच्चे मेरे परिवार ये सब जो है, ये उसी प्रकार से जैसे वो काशी वाला ब्राह्मण कुछ समय के लिए पुरी का ब्राह्मण बन गया था, उसका जो क्षण है थोड़े समय, उसमें दो साल बीत गए लेकिन उसको पता नहीं चला। और उस प्रकार से भगवान से विलग होके हम लोग यहां जो प्रपंच में पड़े हैं, और इस प्रकार से हम लोग जो दुनियादारी में फंसे हैं, ये वास्तविक नहीं है, एक्चुअली ये स्वप्न ही है, और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में कई बार स्वप्न के साथ उदाहरण दी गई। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए और असली जीवन में आना चाहिए। असली जीवन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये असली जीवन है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।